वास्तव में वो स्त्री किसी और पुरुष से प्रेम करती थी और वो अंगूठी उसे दे दी। अस्मत कृचेत परितुष्यति काचित अन्या, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा था, प्रत्येक व्यक्ति को लग रहा था कि बस ये मैं जो कर रहा हूँ सबसे उत्तम है, मेरे जीवन का केंद्र यही है। लेकिन भर्तृहरि ने कहा, अंत में वो स्त्री जो मेरे महल में आई थी उसको वो अंगूठी मिली, लेकिन वो मुझसे प्रेम करती थी तो उसने आकर वो अंगूठी मुझे दे दी। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, धिक्कार है किस पर? धिक्कार है धिक ताम, वो मेरी पत्नी पर धिक्कार है कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तचम, उस व्यक्ति पर धिक्कार है जिसको मेरी पत्नी ने वो अंगूठी दिया। धिक ताम च तम च मदनम, कामदेव ने हम सबको फंसाया, उस पर भी धिक्कार है। इमाम, इस सारी घटना पर धिक्कार है। माम च, और मुझ पर भी धिक्कार है कि मैं इस तरह काम वासना का दास बन गया। और इस घटना के पश्चात भर्तृहरि के हृदय में इतना वैराग्य आ गया कि तुरंत उन्होंने और 100 श्लोक लिख दिए और उसका नाम लिख दिया वैराग्य शतक। तो इस तरह इस कथा के माध्यम से हम समझ पाते हैं, धूमे नाव्रियते वहनिर यथा दलशो मरेन च यथोल बेनावृतम गर्भस्थ तथा तेनेदम आवृतम, कि बद्ध जीव के ज्ञान को ढकने वाला केवल ये काम है। और इसीलिए भगवान गीता में बार बार अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि हे अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, काम वासना से बचो हे अर्जुन, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करो। ये मत सोचो कि उम्र के साथ अपने आप ये वश में आ जाएगा। जब तक आप पूरी शक्ति लगाकर इसे नियंत्रित करने का कम उम्र से ही प्रयास नहीं करोगे तो ये उम्र बढ़ने के पश्चात भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कामादि नाम कठिन कटिधा पालिता दुर्निदेशस एषां त्रयी नोपकरुणा नोपशांति। आम भौतिक जगत में हम देखते हैं, यदि व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो 58 और 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाता है। कम से कम 65 साल के बाद रिटायरमेंट तो मिल ही जाता है। लेकिन जो काम वासना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम आदि, कहते हैं ये ऐसे स्वामी हैं जो जीवन के अंत तक हमें रिटायरमेंट नहीं देते। सालों साल उनकी सेवा करने के पश्चात यदि हम उनसे पूछें, क्यों भाई काम वासना जी बहुत सेवा की, अब तो सेवा निवृत्त करो, वो कहेंगे अरे क्या सेवा की, अभी तो बस 30-40 साल ही हुए, और करो, अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। कामादि नाम कटिन कटिधा, किसी भी तरीके से आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो काम क्रोध लोभ की सेवा में फंस जाता है वो जीवन के अंत तक रिटायरमेंट नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए पहले से ही उनकी सेवा को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगें और उनका जोर जोर से हमें नाम कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Premanande.
तो इस तरह देवताओं की शंका का निवारण हुआ कि ये चारों तरफ फैला हुआ अंधकार का मूल कारण क्या है, और वो ये था कि जय और विजय जो वैकुंठ लोकों से गिर रहे थे उन्होंने दीति के गर्भ में निवास पाया, और वहां पर दीति ने बहुत प्रयास किया और 100 वर्षों तक अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि अंततः तो ये दोनों आकर उत्पात मचाएंगे, लेकिन जितनी देर हो उतना अच्छा है। ऐसा विचार करके दीति ने 100 वर्षों तक उन्हें अपने गर्भ में धारण किया। 100 वर्ष पूरे हुए और उसके पश्चात हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के ये दो महान राक्षस बाहर निकले। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु दोनों में बड़े थे और हिरण्याक्ष छोटे थे। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दो ऐसे भाई थे जो चारों दिशाओं को अकेले ही जीतने की शक्ति रखते थे। हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु का बहुत नम्र सेवक था। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जब धरती पर चला करते थे गान कंपयंतौ चरणम पदे पदे, तो उनके चलने से पूरी पृथ्वी कांपती थी। और जब वो अपने कंधों पर हाथ रख कर खड़े होते, जब अपनी कमर पर हाथ रख कर खड़े होते तो सूर्य की किरणें ढक जाती, इतनी भयंकर शक्ति थी उनकी, इतना विशालकाय शरीर था। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों इतने शक्तिशाली थे कि देवता उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। देवता बहुत परेशान थे और हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष को ये आदेश दिया कि आप जाओ और 14 लोकों पर विजय प्राप्त करो और मुझे संतुष्ट करो, और अपने भाई के आदेश को अपना अपने सर पर रखकर हिरण्याक्ष कंधे पर गदा लेकर सीधे इंद्र के लोक में पहुंच गया। जब वो इंद्र के लोक में गया तो उसने देखा कि इंद्र पहले ही वहां से चंपत हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि अब यहां पर हिरण्याक्ष आने वाला है और उससे द्वंद्व करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं। और मजे की बात यह कि जितने लोकों में हिरण्याक्ष घूमे वो सभी लोक पूरी तरह खाली थे, कोई उनके अंदर निवासी नहीं थे, सब भाग कर कहीं कहीं छुप गए थे। तो हिरण्याक्ष अपने कंधे पर गदा लिए चल रहा था, उनके हाथों में सुंदर सोने की मालाएं थीं, गले में सुंदर पुष्प की माला थी और सर पर सोने का सुंदर मुकुट था और आंखों में भयंकर क्रोध के साथ 14 लोकों में भ्रमण कर रहा था, ये सोचते हुए कि कोई तो मिलेगा जो मुझे युद्ध में ललकारे। तो हिरण्याक्ष क्योंकि राक्षस था, हाथ में गदा लिए घूम रहा था, खाली सिंहासनों को देखकर उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी, वो चाहता था कि किसी के साथ युद्ध भी करने का मौका मिले। और तब उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं विभावरी में जाता हूं। विभावरी क्या है? वो वरुण देव की राजधानी है। ऐसा सोचकर हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर डुबकी लगाई और जब समुद्र के अंदर वो घूम रहे थे तो हिरण्याक्ष के गदा को देखकर समुद्र के सारे प्राणी यहां वहां भागने लगे भय से, और हिरण्याक्ष हंसता हुआ ठहाके लगाता हुआ सीधा विभावरी में वरुण देव के सामने पहुंचा। और वरुण देव कैसे हैं? वरुण देव की उम्र काफी हो गई थी, बड़े बूढ़े थे। हिरण्याक्ष अपनी गदा के साथ वरुण देव के सामने गए और सीधा जाकर उनके सामने गिर गए और अपने दोनों हाथों को इस तरह जोड़ा और कहने लगा, वरुण देव भिक्षा दो, भिक्षा दो, मुझ नाचीज को भिक्षा दो। वरुण देव ने कहा, क्या भिक्षा चाहिए? युद्ध करो मेरे साथ, मुझे युद्ध की भिक्षा चाहिए। वरुण देव बड़े क्रोधित हुए, तुम मेरे बुढ़ापा का बहुत खेल कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, जानते हो कि मैं कई सालों से युद्ध वगैरह नहीं करता, इतना बूढ़ा हो गया हूं तो तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो? ठीक है, युद्ध करना चाहते हो तो मैं तुमको उचित व्यक्ति बताता हूं जिसके साथ तुम युद्ध कर सको, जानना चाहते हो कौन? हिरण्याक्ष ने कहा, हाँ बताओ कौन, कौन है वो? मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं युद्ध करना चाहता हूं। ला जाओ, जाओ और गर्भोदक सागर में विष्णु भगवान ने वराह देव का रूप धारण किया है और वो ही एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हारे हृदय में युद्ध की इस इच्छा को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, वो युद्ध में तुम्हें ऐसा संतुष्ट करेंगे कि तुम्हारा ये शरीर युद्ध भूमि में ऐसा पड़ा रहेगा कि उल्लू और चील और गीदड़ और कुत्ते आकर तुम्हारे इस शरीर का भक्षण करेंगे और आनंद लेंगे, तब तुम्हारे युद्ध करने की इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। जाओ बेटा जाओ, नारायण के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, वराह देव के पास जाओ। ये सुनकर तुरंत हिरण्याक्ष के रोमांच खड़े हुए, बड़ा आनंद हो गया। अपनी भविष्यवाणी सुनकर भी उसकी बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं की। उसे ये समझ में नहीं आया कि वरुण देव ने वास्तव में उसकी भविष्यवाणी की है कि उसके साथ क्या होगा। हिरण्याक्ष अपने हाथ में गदा लिए भागता हुआ गया, और जैसे ही वो गर्भोदक सागर के निकट पहुंचा, उसने देखा कि एक ऐसा अद्भुत प्राणी गर्भोदक सागर से बाहर निकल रहा है और इसकी टोड़ों पर एक सुंदर पृथ्वी इस तरह विराजमान है जैसे पर्वत के ऊपर सुंदर बादल। और हिरण्याक्ष ने वराहदेव के इस रूप को देखा और गर्भोदक सागर से निकलते हुए देखकर हिरण्याक्ष को अचरज हुआ कि वरुण देव ने मुझे लड़ने के लिए इस जानवर के पास भेजा है। उसे विश्वास नहीं हुआ और वो वास्तव में उस युद्ध के लिए बहुत आतुर था। सोच रहा था कि बड़ा अच्छा युद्ध होगा, आनंद आएगा, लेकिन अपने सामने इस सुअर को देखकर बेचारा बुरी तरह दुखी हो गया और कहने लगा, अरे ये तो एक केवल पानी का पशु लगता है, उदयचर प्राणी लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं एम्फीबियस बीस्ट, ये तो कोई ऐसा ही उभयचर प्राणी है, इसके साथ मैं क्या युद्ध करूंगा। और उसके पश्चात वराहदेव को हिरण्याक्ष बुरा भला कहने लगे। वो कहने लगे, त्वं न सपत्नै अभवाह किम्रतो विमृज संस्थाप विमूढ संस्थिते हि अज्ञ मूढ प्रमृजाय संस्कृते। वो कहने लगे कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने उपस्थित हुआ है, ये वास्तव में वही विष्णु है जो अपना रूप बदल कर मुझसे युद्ध करने आया है। भूतकाल में भी इसने अपने रूप को बदल बदल कर मेरे कई भाइयों को त्रास दिया है, और क्योंकि तुम आज मेरे सामने उपस्थित हो गए हो, अरे सुअर, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जब मैं अपने हाथ की गदा को लेकर तुम्हारे सर पर और छाती पर वार करूंगा, तब तुम इसी जमीन पर गिर जाओगे और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बहुत ही बुरे थे और कटु थे। उन्होंने कहा अज्ञ, अज्ञ अर्थात मूर्ख, जो कुछ नहीं जानता। लेकिन श्रीधर स्वामी और अन्य आचार्यों ने इन्हीं श्लोकों का इस तरह तात्पर्य निकाला है कि हिरण्याक्ष की ये गाली भगवान वराहदेव की स्तुति बन जाती है। वो कैसे? सबसे पहले उन्होंने कहा अज्ञ, अज्ञ अर्थात मूर्ख, लेकिन श्रीधर महाराज कहते हैं कि अज्ञ का अर्थ मूर्ख नहीं, ज्ञ अर्थात वो जो सब कुछ जानता है, और अज्ञ अर्थात वो जो ऐसे किसी वस्तु के ज्ञान से वंचित नहीं है। अज्ञ अर्थात 14 लोकों में जितना ज्ञान है वो सब कुछ जानता है, कोई बात उनसे छुपी नहीं है, ये अर्थ है अज्ञ का। और दूसरा एक शब्द का प्रयोग किया, सुराधमा साधित शूकर आकृते, सुराधमा अर्थात सभी देवताओं में सबसे अधम। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसका तात्पर्य ये नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि वराहदेव इतने महान हैं कि उनके सामने बाकी सारे सुर सारे देवतागण अधम हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है सुराधम। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी ने हिरण्याक्ष के मुंह से जो गालियां निकली उन गालियों को भी एक श्लोक और स्तुति के रूप में परिवर्तित कर दी। एक और बात जो हिरण्याक्ष ने की वो ये थी, न स्वस्ति अयनम ममेक्षत, न स्वस्ति अयनम ममेक्षत, अर्थात वो भगवान श्री वराहदेव को चेतावनी दे रहे थे कि यदि इस पृथ्वी को आप छोड़ोगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, न स्वस्ति अयनम, बहुत बुरा होगा, धमकी दे रहे थे। लेकिन श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में वो कह रहे थे कि जब तक तुम इस पृथ्वी को संभालोगे नहीं तब तक पृथ्वी का भला नहीं हो सकता, वो उनकी स्तुति कर रहे थे। और न स्वस्ति अयनम ममेक्षत, अर्थात कह रहे थे मम एक्षत, मेरे देखते देखते मेरे आंखों के सामने से आप इस पृथ्वी को चुरा कर लेके जा रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत। लेकिन श्रीधर महाराज कहते हैं कि वास्तव में ये उनकी स्तुति कर रहे थे, कह रहे थे कि आप कितने शक्तिशाली हैं कि मैं यहाँ अस्त्रों के साथ खड़ा होकर देख रहा हूँ और फिर भी आप ये कार्य कर पा रहे हो, मतलब आप कितने महान हैं। तो ये महान आचार्यों का गुण होता है कि सरस्वती जी की कृपा से वो ऐसे गालियों का भी ऐसा तात्पर्य निकालते हैं कि वो भगवान की स्तुति बन जाती है। तो इन कटु वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु को बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के जितने भी अंश हैं भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं और कभी ये नहीं चाहते कि उनके अंश उनसे दूर रहें, उनके अंश उनसे विमुख रहें। इसीलिए हिरण्याक्ष के इन कटु वचनों को सुनकर वराहदेव बहुत दुखी हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं किस तरह इस व्यक्ति के द्वेष को दूर कर सकता हूं। उस समय चाहे तो वो पृथ्वी को वहीं रख कर युद्ध के लिए तैयार हो सकते थे, लेकिन वराहदेव ने निश्चय किया कि नहीं, सबसे पहले सेवा, मेरी सेवा है कि इस पृथ्वी को लेकर मैं अपने निर्धारित स्थान पर रख दूं, चाहे बीच में कोई कैसे भी वचन मुझे क्यों न सुनाए, मुझे उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचकर हिरण्याक्ष के बाधा डालने पर भी वराहदेव रुके नहीं, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा देना चाहते थे कि हम अपनी सेवा में जब लगेंगे तो हमारी सेवा में अनेक बाधाएं आएंगी, कई व्यक्ति हमें अपनी सेवा से वंचित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब हम भगवान की सेवा में एक बार लग गए तो फिर हमें उस सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। और ऐसा सोचकर वराहदेव उस पृथ्वी को अपने स्थान पर पहुंचाए और फिर मुड़कर हिरण्याक्ष को संबोधित करने लगे। और जब वो हिरण्याक्ष से वाणी कह रहे थे तो उनकी वाणी में बहुत क्रोध था, बड़े क्रोधित थे कि हिरण्याक्ष की ये हिम्मत कि ये मुझसे ऐसे वचन कह रहा है। और उस समय वराहदेव कहने लगे कि देखो, जो योद्धा होते हैं वो खड़े खड़े केवल वचनों को गंवाते नहीं, वास्तविक योद्धा वो होता है जो अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाए। तो यदि तुम वास्तव में कोई योद्धा हो तो अपने हाथों में अस्त्रों को उठाओ और हो जाए कोई युद्ध। आप यूं खड़े होकर केवल गालियां देते रहोगे तो क्या होगा। ऐसा कह के वराहदेव ने हिरण्याक्ष को ललकारा। हिरण्याक्ष ने जब भगवान की इस बात को सुनी तो उसे भी बड़ा क्रोध आया और उसे लगा कि ये इसकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मेरे साथ युद्ध करने का प्रयास करे, और वो जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। अपने हाथ में उन्होंने गदा ली और उस गदा को लेकर भगवान के सुंदर शरीर पर वार करने गया, लेकिन भगवान ने ऐन वक्त पर अपने शरीर को उसके वार से हटा लिया और हिरण्याक्ष की गदा भगवान के शरीर को छू नहीं सकी। उसके पश्चात भगवान ने अपने हाथ के गदा को लेकर हिरण्याक्ष पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन हिरण्याक्ष गदा युद्ध में बहुत निष्णात था, उसने कैसे तो अपने आप को बचा लिया। उसके पश्चात भगवान वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में ऐसा भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, दोनों के शरीर से जो खून निकल रहा था उस खून के गंध को सूंघकर दोनों का क्रोध और बढ़ रहा था। तभी ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी भगवान को देखकर कहने लगे, अरे भगवान, ये कैसी लीला कर रहे हो, इतने समय से हमें इस हिरण्याक्ष ने घर से बेघर कर दिया। हम जानते हैं कि आप बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन हमारी ऐसी परीक्षा मत लो। आप चाहें तो एक क्षण में इसे मार सकते हो, कृपा करके इसे मारिए ना। इतने सारे देवतागण है, देखिए। और भगवान ने ऊपर देखा, सारे देवतागण बड़े आतुर होकर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था। जब भी भगवान और उनके किसी प्रतिद्वंद्वी का युद्ध होता है तो सारे देवतागण आसमान में एकत्र होकर आनंद लेते हैं। जब हिरण्यकश्यपु और भगवान नरसिंहदेव का युद्ध हो रहा था तब भी सब एकत्र होकर ध्यान पूर्वक देख रहे थे। तो वास्तव में इस तरह कंपटीशन और स्टेडियम में मैच वगैरह ये पुरानी बात है, लेकिन जब युद्ध हुआ करते तो असली युद्ध हुआ करते, जिसमें किसी न किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित थी। तो तब हिरण्यकश्यपु के युद्ध के समय भी देवताओं ने बहुत प्रयास किया हिरण्यकश्यपु के साथ भगवान को चेतावनी देने, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यपु युद्ध करते करते बीच बीच में ऊपर देख रहा है और वो भली भांति नोट कर रहा है कौन कौन ऊपर से युद्ध का आनंद ले रहा है। तो देवताओं को ये चिंता थी कि बाय चांस हिरण्यकश्यपु नरसिंहदेव के हाथ से छूट गया तो बाद में हमारी खैर नहीं, एक एक को देख लेगा। इसी तरह यहाँ ब्रह्मा जी को आकर सारे देवतागण कहने लगे कि जाके बताइए वराहदेव को कि इस युद्ध को आगे न खींचें, शीघ्र से शीघ्र इसे समाप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए भगवान, अभी बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जिसे कहते हैं अभिजीत। इस शुभ मुहूर्त में आप यदि इसका वध करोगे तो उचित होगा, क्योंकि इसके बाद संध्या हो रही है और अंधेरा एक बार हो जाए तो राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है, तब इस तरह का युद्ध आपके लिए बहुत कठिन होगा, कृपा करके आप तुरंत उसका वध कर दें। ब्रह्मा जी की इन बातों को सोचकर वराहदेव जोर जोर से हंसने लगे। सोचे होंगे, अरे ब्रह्मा, तुम भी ये नहीं जानते कि मेरी क्या शक्ति है। खैर, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुस्कुराए और उन्होंने सोचा कि मेरे इस युद्ध की वजह से मेरे भक्तों को परेशानियां हो रही हैं, तो ठीक है, युद्ध शीघ्र अति शीघ्र समाप्त करें। तो उन्होंने अपने ही पार्षद जो कि वैकुंठ लोक से आए थे, हिरण्याक्ष, उनसे युद्ध करना और आगे बढ़ाया और अपने हाथ में गदा लेकर हिरण्याक्ष की ठोड़ी पर मारने का प्रयास किया, लेकिन हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान की गदा को दूर फेंका और भगवान के हाथ से गदा निकलकर दूर जा गिरा। और इसे देखकर ऊपर सारे देवतागणों में हाहाकार मच गया, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तभी भगवान शांति से हिरण्याक्ष के सामने खड़े थे। हिरण्याक्ष ने भगवान पर वार नहीं किया, क्योंकि वो भी क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहते थे। तो हिरण्याक्ष ने भगवान की गदा उठाई और वापस भगवान को दी, और भगवान फिर अपने हाथ में गदा लेकर युद्ध करने लगे। और इस बार जब हिरण्याक्ष ने भगवान पर वार किया, तब भगवान ने अपने पैर से हिरण्याक्ष के गदे को दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष का गदा दूर जाकर गिरा। भगवान ने हिरण्याक्ष से कहा, जाओ उठा लो, गदा को उठा लो। हिरण्याक्ष ने अपने हाथ में गदा फिर उठाई, फिर युद्ध करने लगा, फिर आक्रमण करने लगा। फिर भगवान ने पैर से उसकी गदा को दूर फेंकी। इस बार भगवान ने सोचा, बेचारा शायद स्वयं उठाने में शर्मा रहा है। भगवान ने अपने हाथ में गदा ली और हिरण्याक्ष के हाथ में दी। हिरण्याक्ष को बड़ा शर्म आया, उसने भगवान को मना कर दिया और कहा, नहीं गदा नहीं चाहिए। और उसने अपने हाथ में त्रिशूल ले ली और उस त्रिशूल से भगवान पर आक्रमण किया। भगवान ने अपने हाथ में सुदर्शन ले ली और उस सुदर्शन से त्रिशूल का विनाश कर दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, और सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली होता है कि केवल भगवान ही उसे चला सकते हैं और कोई नहीं। कई बार राक्षसगण भगवान के सुदर्शन चक्र को लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। क्योंकि एक बार द्वारकापुरी में अश्वत्थामा गए थे और अश्वत्थामा ने भगवान से कहा कि मुझे आपके कुछ अस्त्र चाहिए। भगवान ने कहा, कौन सा अस्त्र चाहिए? अश्वत्थामा ने कहा, सुदर्शन अस्त्र चाहिए। तो कहा, ठीक है ले लो। भगवान ने अश्वत्थामा को सुदर्शन दे दिया, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा ने अपने हाथ में सुदर्शन को पकड़ने का प्रयास किया, सुदर्शन इतनी तेज रफ्तार से घूमने लगा, अश्वत्थामा को लगा कि उसका ही गला कट जाएगा। अश्वत्थामा ने घबरा कर उसे वापस भगवान से लौटा दी, कहा कि ले लो भाई, मुझे नहीं चाहिए ये। तो भगवान ने अश्वत्थामा को पूछा, देखो तुम ये सुदर्शन क्यों चाहते थे? अश्वत्थामा ने कहा, इसे लेकर मैं आपको मारना चाहता था। तो ऐसे ऐसे बेशरम राक्षसों से भगवान का पाला पड़ा है, लेकिन भगवान अपने सुदर्शन चक्र के ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हैं और केवल वही इस सुदर्शन को ठीक तरह से चला पाते हैं। और उनके सुदर्शन के प्रभाव से चारों तरफ जो भी अशुभ चिन्ह होते हैं सब दूर हो जाते हैं। उस समय हिरण्याक्ष के हाथ के जो अस्त्र थे नष्ट हो गए। हिरण्याक्ष ने विचार किया कि और जितने भी अस्त्र मैं निकालूंगा, भगवान एक एक करके सबको मार देंगे। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि अब मुझे आक्रमण की शैली बदलनी होगी। अचानक भगवान ने देखा कि हिरण्याक्ष गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया, कहां गए कुछ पता नहीं लगा, और चारों तरफ अंधकार फैल गया, और अचानक आसमान में से मलमूत्र की वर्षा होने लगी। आसमान में से अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का बौछार होने लगा। बहुत बड़ी नंगी राक्षसाएं आकर जोर जोर से हंसने लगी। कई राक्षस गण अपने हाथ में मृत शरीरों की खोपड़ियों को लेकर नाच रहे थे और हाहाकार मचा रहे थे। इन सभी अशुभ चिन्हों को देखकर ऊपर खड़े देवतागण परेशान हो रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान कर क्या रहे हैं। और उस समय वराह देव ने अपने हाथों में सुदर्शन को धारण किया और उस सुदर्शन को लेकर भगवान ने एक ही क्षण में उस सारी समस्या को छिन्न भिन्न कर दिया। और जितनी भी हिरण्याक्ष की माया शक्ति थी वो सारी माया शक्ति नष्ट हो गई। तो भगवान के सामने कोई राक्षस अपनी माया शक्ति नहीं चला सकता। और उस समय हिरण्याक्ष ने सोचा कि भगवान ने मेरे सभी अस्त्रों को विफल कर दिया है, अब मेरे पास एक ही उपाय बचता है कि भगवान को अपने दोनों हाथों से आलिंगन कर इस तरह कुचल दूं कि भगवान की हड्डी पसली टूट जाए। और हिरण्याक्ष ने अपने दोनों हाथों को भगवान को इस तरह आलिंगन करने का प्रयास किया, लेकिन पूरा जोर लगाकर हिरण्याक्ष ने यूं किया और अचानक उन्होंने देखा कि भगवान उनके हाथों के बाहर है। चकरा गए, ये कैसे हो सकता है, इतनी दूरी पे वो खड़े थे सुअर, उसको मैंने ऐसा किया, अचानक सुअर बाहर आ गया, ये कैसे हुआ। उसने उसको लगा कि शायद मैंने आलिंगन करने में कुछ गलती की, और निकट आया और पूरा ध्यान साध कर और तेजी के साथ उसने आलिंगन करने का प्रयास किया। अहो आश्चर्यम, वो तो फिर बाहर थे। तो हिरण्याक्ष समझ गए कि ये तो यूं आलिंगन करके हमारे नियंत्रण में नहीं आने वाले। तात्पर्य ये है कि भगवान अभक्तों के नियंत्रण में स्वेच्छा से नहीं आते। यशोदा मैया की डोरी से भगवान बंध जाएंगे, लेकिन हिरण्याक्ष से भला क्यों आलिंगन करें। हिरण्याक्ष ने क्या सेवा की थी, हिरण्याक्ष ने तो उल्टा भगवान को गालियां दी थी। भगवान के शत्रु थे, तो भगवान ऐसे लोगों के साथ वैसे रवैया नहीं रखते जो अपने भक्तों के साथ, क्योंकि गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान हिरण्याक्ष की हाथों में नहीं आए। हिरण्याक्ष जो कि असुर था, उसे लगा कि भगवान को मैं नियंत्रित कर सकता हूं, भगवान एक सीमित व्यक्ति हैं। गीता में असुरों की मनोविज्ञान के विषय में बताया है, इदम् मध्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदम् अस्ति तमिति मे भविष्यति पुनर्जनम् आज्योपजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। कोई भी राक्षस इस तरह से सोचता है। दानव के सोचने की प्रक्रिया इस तरह होती है कि आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, परसों और इतना होगा, आज मेरे सामने इतने सारे शत्रु हैं, इतने सारे शत्रुओं को मैंने मार दिया है, नष्ट कर दिया है, कल इन शत्रुओं को मारूंगा। इस तरह वो रोज अलग अलग शत्रुओं की सूची बनाता रहता है और सोचता है कि भविष्य में एक दिन वो आएगा जब मेरे सारे शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। और अंततः ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ईश्वरोहम, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी, मैं भोगी हूं, सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित कर सकता हूं, बलवान, मैं सर्वशक्तिमान हूं, सुखी, और मेरे जैसा सुखी दूसरा कोई नहीं। तो हिरण्याक्ष को लगा ये सारी बातें बस मेरे आलिंगन के अंदर ही हैं, एक बार इन्हें आलिंगन कर दूं तो तुरंत उन्हें कुचल सकता हूं। लेकिन भगवान और भगवान की योजनाएं हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों से पूरी तरह परे हैं, और इसीलिए हिरण्याक्ष के प्रयास करने पर भी वो वराहदेव को अपने आलिंगन के अंदर नियंत्रित नहीं कर सके, पकड़ नहीं सके। और उस समय वराहदेव ने निश्चय किया कि हिरण्याक्ष अब लीला बहुत आगे चल गई, अब लीला को समाप्त किया जाए, समय बढ़ता जा रहा है, एक और घंटा ही बचा है, चलो हिरण्याक्ष का वध हो। और वराहदेव ने अपने पैर से हिरण्याक्ष के कान के पीछे धीरे से ऐसे छुआ, बहुत जोर से झापड़ नहीं लगाया या कोई बहुत जोर से गदा से प्रहार नहीं किया, कोई अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, बस यूं धीरे से स्पर्श कर दिया ऐसे और कहा बस हिरण्याक्ष हो गया। और तुरंत उसी समय हिरण्याक्ष की आंखें गोल गोल घूमने लगीं, उनके नाक और मुंह से खून बाहर निकलने लगा और हिरण्याक्ष को चक्कर आने लगा। जिस राक्षस ने बड़े बड़े देवताओं के साथ चक्कर किया था वो तुरंत वहीं चक्कर खाकर गिर गए। भगवान श्री विष्णु वराह देव उनके ऊपर इस तरह खड़े थे, हिरण्याक्ष का मृत शरीर वहां पर खड़ा हुआ देखकर सारे देवताओं ने आनंद मनाया। ऊपर से भगवान वराह देव के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बुगुल बजने लगे और सारे देवतागण आनंद मनाने लगे और जोर जोर से कहने लगे वराहदेव भगवान की, वराहदेव भगवान की, और साथ साथ जोर जोर से कीर्तन भी करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामो हरे रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गौर हरि बोल बोलो हरि नाम संकीर्तन की।
तो इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय में छुपे हुए हिरण्याक्ष जैसे अनेक राक्षसों का वध किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है और हमें वही सब लाभ कलयुग में नाम लेकर प्राप्त हो सकता है जो पहले के युगों में अलग अलग दान तप यज्ञ के माध्यम से मिल पाता था। तो इसलिए कहा जाता है विचेर्यानि विचेयानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि वत्वन्नामानि भवन्तु न। बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं वो ये कि कोई कृपण व्यक्ति होता है, कोई कंजूस होता है, वो अपने धन से कितना आसक्त होता है। तो यदि हम धन को खर्च नहीं करते तो उसके साथ तीन कार्य किए जा सकते हैं, विचेयानी विचेयानी विचारयानी। ये क्या है? कलेक्ट रिमेम्बर एंड काउंट, अर्थात धन को अर्जित करो, धन को अर्जित करने के पश्चात उसे गिनो। यदि गिनने का काम नहीं कर रहे, बैंक में डाल दिए, तो उसके विषय में सोचो। तो एकत्र करना, गिनना और सोचना, ये तीन बातें संचित धन के साथ हो सकती हैं। विचेयानी विचारयानी विचिन्त्यानी पुनः पुनः कृपणस्य धनानिव त्वन्नामानि भवन्तु न। तो भक्त इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके हरि नाम का भी मैं इसी तरह संचय करूं कि पहले हरि नाम को एकत्र करूं माला जप करके, और जब हरि नाम इस तरह मैं एकत्रित करने लगूं उसके पश्चात उसके विषय में सोचूं। विचार यानी विचय यानी विचिंत यानी, और बार बार उसके विषय में चर्चाएं करूं। तो हरि नाम के साथ भी हमें इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे कोई बहुत धन से आसक्त व्यक्ति धन के विषय में निरंतर सोचता रहता है। तो तीसरे स्कंद में प्रसंग आगे बढ़ाते हुए हम उस जहां महान ऋषि